हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद का संक्षिप्त वर्णन। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तथा वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेन कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थो महा श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न परा वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्भर दरुणबिम्बफल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम् किमपि तत्व अहम् न जानि करारविंदे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्व मृतुमेतदेव गोविंद दामो धरमाधवेति बर्हापीरं नटवरवपुकर्णयो कर्णिकारं बिभ्रात्वा सह कनकपिशं वैजन्तीं च मालं रन्ध्राण्वेणोरदरसुदया पूर्णयन् गोपवृन्दवृन्दारण्यम् स्वपदरमणं प्राविशत् कीर्तकीर्तिम् जय जय श्री राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण की। हरे कृष्णा। तो तीसरे स्कंद स्टार्ट करने से पहले हमने दूसरे स्कंद में जो कुछ पढ़ा है उसको हम संक्षिप्त में आज श्रवण करेंगे। दूसरे स्कंद में 10 अध्याय और मुख्य अंग यानी साधन जो है भगवान की प्राप्ति में, मुख्य साधन क्या है? भागवत श्रवण करना। जो हमने श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में जो मुख्य वस्तु सुखदेव गोस्वामी बताई है कि यदि जीव को भगवान को प्राप्त करना है तो उसके लिए मुख्य अंग क्या है? श्रवण। और श्रवण में कैसे श्रवण करना है? श्रद्धा के साथ। यदि कोई जीव श्रद्धा के साथ किसी शुद्ध वैष्णव से भगवत वाणी को, भगवत चरित्र को, भगवत लीलाओं को श्रवण करता है तो उसे अवश्य भगवत प्राप्ति होती है। और श्रवण के तीन अंग के विषय में हमने पढ़ा कि कान से श्रवण करना है, केवल क्योंकि कान तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा श्रवण किया जाता है, लेकिन श्रवण केवल करने से कुछ नहीं जब तक उसके अंदर मन नहीं लगा हो, है ना। कभी कभी ऐसा होता है हम श्रवण तो कर रहे होते हैं लेकिन उसमें मन नहीं लगा तो समझो श्रवण नहीं किया। तो श्रवण का मतलब होता है कि कान से सुन रहे हैं और मन से जो है उसको मनन भी कर रहे हैं कि जो हम श्रवण कर रहे हैं उसको स्वीकार मेरा हृदय कर रहा है, जो भगवान की लीलाओं के विषय में, भगवान के शब्दों के विषय में, भगवत उपदेश जो मुझे मिल रहा है क्या मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ या उसमें मुझे कुछ अभी संदेह है। तो वो श्रवण के साथ साथ में जैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं तो फिर परीक्षित महाराज प्रश्न करके उस संदेह को, उन डाउट्स को क्लियर करते आ रहे हैं। तो इस तरह से हम भी जब श्रवण करते हैं तो क्योंकि बुद्धिजीव तो कुछ न कुछ तो प्रश्न भी आ रहे होते हैं तो वो बड़े ही विनम्रता के साथ, प्रेम और आदर के साथ उनको पूछना, यानी मन उसको स्वीकार कर ले और स्वीकार करने तक ही लिमिटेड नहीं रहना बल्कि उसके बाद क्या है? निध्यासन। निध्यासन मतलब अब मेरे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, अब मैंने जो श्रवण किया है उसी के अनुसार अपने जीवन को मुझे चलाना है, उसी के अनुसार अपने जीवन के प्रत्येक कदम को आगे बढ़ाना है। क्योंकि हम चाहे जितना भी श्रवण करते हैं लेकिन यदि हमारा जीवन परिवर्तित नहीं होता है, हम उसको मानते, अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो मानते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ प्रैक्टिकल नहीं होता है, है ना। तो फिर क्या लाभ है यदि हम श्रवण कर रहे हैं कि ये जीवन तो नश्वर है, जो कुछ इस संसार में हमें प्राप्त हो रहा है वो सब यहीं छोड़ के जाना है, भगवत प्रेम, भगवत सेवा, भगवान का नाम ही हम लेके जाएंगे, फिर भी यदि संसार की छोटी छोटी वस्तुओं में हमारा मोह है, यदि फिर भी भौतिक जितने भी लोग हैं उनके साथ द्वेष है, आसक्ति है, यदि दूसरों को अभी भी हमारा मन ऐसा करता है कि दूसरों को हम दुख देते हैं या हमारे कारण कोई दुखी है, क्यों? अगर हम भगवान के विषय में श्रवण कर रहे हैं, यदि हम अपने को आत्मा मानते हैं, यदि हम कर्म के सिद्धांत को मानते हैं तो जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो तो हमारे कर्मों के अनुसार हो रहा है, फिर हम कैसे किसी को दुख देने का कारण बन सकते हैं या कैसे किसी को कुछ ऐसा शब्द बोल सकते हैं जिससे उनको दुख हो, या अपने जीवन में कुछ ऐसा जो कि हमारे आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बनता है। याद रखिए, श्रवण में जब हम श्रवण करते हैं तो मेन वस्तु जो हमें बताई जा रही होती है कि क्या करें कि हम अपनी भगवत प्रेम को बढ़ा सके, बस। और बाकी जो वस्तु प्रतिकूल है कि जिससे हमारा कृष्ण प्रेम में कमी आ रही है, जैसे किसी की निंदा करना, किसी के विषय में कुछ उल्टा बोलना या कुछ भौतिक आसक्ति, भौतिक वस्तु, भौतिक व्यक्ति, वो सब तो हमारे लिए वो प्रतिकूल अवस्था है, तो उसको यदि हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इसका मतलब है कि अभी तक हम भक्ति के होता है। पथ पर आगे बढ़ने के लिए सीरियस नहीं है तो निद्यासन अर्थात वही कार्य अनुकूलस्य संकल्पो प्रतिकूलस्य वर्जत, जो अनुकूल है भक्ति के मार्ग में उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना और जो प्रतिकूल है उसको वर्जित उनको अस्वीकार करना। तो ये वेद का मंत्र है कि श्रवण मनन और निध्यासन, ये तीन जब एक साथ होते हैं तभी उसके बाद ही हमारी भक्ति की उन्नति होती है। कान से श्रवण करना, मन से स्वीकार करना और हृदय से प्रैक्टिकल करना। और दूसरा ये कि जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो भले ही जीवन में कुछ दुख आते हैं, कुछ कष्ट आते हैं, कुछ प्रतिकूल अवस्था आती है, लेकिन यदि हम अपनी भक्ति से संतुष्ट नहीं है, आनंदित नहीं है, दुख के होते हुए भी यदि संतुष्टि नहीं है तो मतलब हम अभी तक कृष्ण कॉन्शियसनेस के आनंद को अनुभव नहीं कर पाए हैं। क्योंकि कृष्ण भक्ति मीन्स हृदय में एक आनंद होना चाहिए कि मेरे साथ कृष्ण जो भी कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू कृष्ण फॉर नाउ एज इट इज। जो भी सिचुएशन है, जो भी अवस्था है, जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, वो तो भगवान की कृपा से प्राप्त हुए हैं, तो उसमें यदि हम धन्यवाद नहीं कह रहे हैं तो मतलब अभी तक कृष्ण भक्ति का आनंद नहीं आया। तो जहाँ पर हमारा प्रथम स्कंद समाप्त हुआ था वहां पर सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने दो प्रश्न पूछे थे 1.19.37 and 38 में। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कहा, अतः पृच्छामि संसिद्धिम् योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, अतः पृच्छामि संसिद्धिम्। अब मैं आपसे सिद्धि का पूर्णता का मार्ग पूछ रहा हूँ। योगिनाम परमम गुरु, आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप योगियों के परम गुरु हैं। और प्रश्न क्या है? एक प्रश्न है, उसके दो पार्ट है। पहला, पुरुषस्येह यत् कार्यम, कि प्रत्येक जीव का हर समय क्या कर्तव्य है। जब जीव को मनुष्य जन्म प्राप्त होता है तो यत् कार्यम, उसका क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए। और दूसरा पार्ट है, म्रियमाणस्य सर्वथा, जो मृत्यु के बिल्कुल निकट है उसे क्या करना चाहिए। और इसी बात को और भी स्पष्ट करके अगले श्लोक में भी पूछते हैं, ये श्रोतव्यम मथो जप्यम यत् कर्तव्यम निभि प्रभु स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यत्वा विपर्ययम्। यत् श्रोतव्यम, के उसे क्या सुनना चाहिए, यत् अथो जप्यम, उसे क्या जप करना चाहिए, यत् कर्तव्यम, उसका क्या कर्तव्य है, इंद्रियों के द्वारा उसे कैसे कार्य करना चाहिए। एकदम क्लियर क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, जब क्या करना चाहिए, अपने इंद्रियों से कैसे कार्य करना चाहिए, और यहाँ तक पूछा स्मर्तव्यम, किसे स्मरण करना चाहिए, भजनीयम, किसका भजन करना चाहिए। और ये ही खाली नहीं बताना बल्कि साथ साथ में ये भी बताना, ब्रूही यद्वा विपर्ययम्, यदि इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ जाता है तो वास्तव में जीने का ढंग पूछा है कि मनुष्य को किस तरह से जीना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किसको याद करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, अपनी इंद्रियों से क्या कार्य करना चाहिए, कैसे अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को सफल करना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात ये पूछी है, ब्रूही यद्वा विपर्यय, और क्या नहीं करना चाहिए वो भी बता दीजिए। और यह प्रश्न सुनने के उपरांत दूसरे स्कंद के प्रथम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले तो महाराज परीक्षित के इस प्रश्न का अनुमोदन करते हुए प्रशंसा करते हैं। श्री शुक उवाच, वरी यानेश ते प्रश्न कृतो लोक हितम रिप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः पर, के आपने कितना सुंदर प्रश्न किया है। वरी यानेश ते प्रश्न क्यों सुंदर है? कृतो लोक हितम नृप, क्योंकि इससे केवल एक व्यक्ति का आपका कल्याण नहीं होगा, समस्त लोगों के लोक का हित है। जो आपने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य जीवन जब प्राप्त हो जाता है तो उसका क्या कर्तव्य है, और मृत्यु के समक्ष जब जीव आ जाता है तो वो जो मैं उसका उत्तर दूंगा तो कृतो लोक हितम, यानी समस्त जीवों का हित होगा। क्या हित होगा? समस्त दुखों का विनाश हो जाएगा। जीव को जीना किस तरह है वो पता चल जाएगा और परम सुख की प्राप्ति होगी। संसार में प्रत्येक जीव चाहता है कि हमारा भी हित हो और दूसरों का भी कल्याण हो, लेकिन कैसे होगा वो नहीं पता। हर कोई, जितनी भी एसोसिएशन है, जितनी भी वेलफेयर एसोसिएशन है, वो चाहती है ना कि दूसरों का कल्याण हो, लेकिन वो अपने अपने पॉइंट ऑफ विजन से कल्याण करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी प्रथम श्लोक में बताते हैं कि जीव का यदि कल्याण होगा तो कैसे होगा। जब तक जीव भगवान को नहीं जानेगा तब तक हित हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम आत्मा है ना। और संसार में जितने भी लोग अपने हित के लिए कार्य करते हैं वो भौतिक वस्तुओं के द्वारा, भौतिक बुद्धि के द्वारा, भौतिक व्यक्तियों के द्वारा कल्याण तो केवल भौतिक शरीर का होगा ना, लेकिन जीव का वास्तव कृतो लोक हितम नृप, क्यों आत्मविद सम्मतः पुंसाम। जितने भी लोग आत्मा को जानते हैं ना, उन्होंने सम्मत, उन्होंने स्वीकृति दी है, उसी बात को मैं आपको बताऊंगा। और उसके तो सबसे पहले तीन श्लोकों में वो विपर्यय, जैसे उन्होंने प्रश्न में क्या पूछा था, ब्रूहि यद्वा विपर्यय, पहले ये भी बताओ कि क्या नहीं करना चाहिए, तो तीन श्लोकों में बहुत ही सुंदर रीति से वो बता दिया जो नहीं करना है, क्योंकि उसको डिटेल से बताने की आवश्यकता ही नहीं है, प्रत्येक जीव वही कार्य करता है। और क्या बताया, श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम संति सहस्रश अपयष्टा मात्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम, कि जो गृहेषु है, घर गृहस्थी में आसक्त लोग है ना, उनके लिए तो श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र, पहले उनके पास तो सुनने और बोलने के हजारों टॉपिक हैं। उन्होंने पूछा था ना कि आप बताइए यह श्रोतव्यम या तो जप्यम, उनको क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए। तो जो ग्रह में दी है, जो ग्रह में आसक्त हैं, उनके लिए तो बहुत कुछ है सुनने के लिए, लेकिन क्योंकि उनको तो वास्तविकता पता ही नहीं कि वो मनुष्य है, लेकिन वास्तव में क्या है, अपश्यता मतलब अंधेगा, उनको आत्मतत्व का क्या ज्ञान ही नहीं है। जो अपने भगवान के साथ अपने संबंध को जानते ही नहीं है, आत्मा को नहीं जानते, मैं कौन हूँ, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, मेरा कर्तव्य क्या है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। वो क्या करते हैं अपने जीवन में, सारे जीवन को किस तरह से वेस्ट करते हैं कि अपने समय को टीवी देखने में, स्पोर्ट्स देखने में, न्यूज़पेपर पढ़ने में, और कितना भौतिक जगत का आकर्षण है उनके जीवन में। जिधर भी संसार में देखो केवल भौतिक वस्तुएं दिखती हैं, बड़े बड़े मॉल्स क्रिएट होते हैं, बड़े बड़े पिकनिक पॉइंट्स होते हैं, वो बड़े बड़े सुपर स्टोर्स होते हैं, वहां पर जाके देखा जाए तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ इस देह के लिए ही आनंद प्रदान करने की वस्तुएं हैं। संसार में जो जीव जितना कमाता है, जितना एजुकेशन प्राप्त करता है, जितना अर्न करता है, जितनी सुविधाएं प्राप्त करता है, वो सब किसके लिए है, वो सिर्फ इस देह के लिए है। और शाह पर सुखदेव गोस्वामी पहले ही बताते हैं अपश्यताम आत्मतत्वम, क्योंकि वो अपने आत्मा को नहीं जानते, इसलिए क्या करते हैं, निद्रा ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावय देवाचार्ते हया राजन कुटुंब भरणे ववा, व्यर्थ कार्यकलाप में अपना सारा मनुष्य जीवन, अपनी पूरी आयु नष्ट कर देते हैं। निद्रा ह्रियते नक्तम, निद्रा ह्रियते यानी क्या, जो रात्रि का समय होता है, नक्त मतलब रात्रि जो है वो सोने में समाप्त कर देते हैं, या फिर व्यवायेन मतलब मैथुन करने में या इंद्रिय भोग में अपनी रात्रि का समय नष्ट कर देते हैं। दिवाचारते हैं या राजन कुटुंब भरणे, और दिन को क्या करते, वो सिर्फ गधे की तरह काम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक केवल उनके माइंड में यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा हम अर्न करें, धन कमाएं। कोई कोई लोग जो है वो एक्स्ट्रा काम करते हैं, ओवर टाइम ड्यूटी करते हैं। क्यों करते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने इस देह को अधिक से अधिक आनंद देने के लिए। पर उनको ये नहीं पता चलता कि इतनी जब हम स्ट्रगल करते हैं भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, तो जिस देह को आनंद देने का सोच रहे उसी को तो हम कष्ट दे रहे हैं। आत्मा के कल्याण का तो छोड़ो, उनको तो इतनी भी अक्कल याद नहीं आती कि इन वस्तुओं को संगठन करते 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 भोजन, दो टाइम भोजन करने का भी उनको टाइम नहीं होता। वो वहीं पर धंधे में ही, अपने बिजनेस में ही, उनको एक टाइम मुश्किल से खाना आता सुबह से, घर से बनकर आता है और रखे रखे शाम को खाते हैं, वो भी ठंडा हो जाता है। तो यहाँ शुकदेव गोस्वामी बताते हैं ये कोई जीवन नहीं है वास्तव में। मनुष्य जीवन इस तरह से बर्बाद करने के लिए नहीं बना है, बल्कि उसको तो अपने आत्मा के कल्याण के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और उनको कुछ पता भी, मतलब समझ में भी नहीं आता, देख भी रहे हैं कि प्रत्येक जीव मर रहा है ना। पिता मर गए, दादा मर गए, कभी कभी तो हम देखते हैं किसी किसी के छोटे छोटे बच्चे भी मर गए। परंतु इस समय उनको यही लग रहा होता है कि हमको तो जीना है। और यही बात युधिष्ठिर महाराज जो है वो यक्ष को कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य जन्म आश्चर्य यही है, क्या तेषां प्रमत्तो निधनम् पश्यन्नपि न पश्यते। वो देख भी रहे हैं कि संसार में प्रत्येक जीव को एक दिन जाना है। जितना भी अर्जित किया जाता है, जितना भी धन हो, जितना भी फेम हो, जितना भी भौतिक आनंद हो, वो सब छोड़ के जाना है। और जाने के बाद यदि सद्गति प्राप्त करने के लिए कृष्ण भक्ति नहीं की, तो पुनः ना जाने किस योनि में आकर वापिस से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों को भोगना पड़ेगा। इसलिए जीव को क्या करना चाहिए, वो श्लोक नंबर 5 में बहुत ही क्लियरली असली प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में बताते हुए कहते हैं, तस्मा भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्यश्चिच्छताभयम् तस्मात् भारत सर्वात्मा। इसलिए हे भारत, सर आत्मा जो प्रत्येक जीव के आत्मा है, अर्थात प्रत्येक जीव के प्रेम करने योग्य है, जो भगवान है अर्थात प्रत्येक जो ऐश्वर्य है उनके स्वामी, वो षडैश्वर्य से युक्त है, परम सुंदर है, परम कंट्रोलर है और परम ज्ञानी है, परम बलवान है, परम बुद्धिमान है और परम वैराग्यवान है, भगवान है। और वो कौन है साफ साफ बता रहे, हरि। हरि अर्थात जो प्रत्येक जीव के समस्त दुखों का हरण करते हैं, सर्व अमंगल हरि, समस्त पापों का हरण करते हैं वो हरि। उसी भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्यश्चेत्थया भयम् इच्छता भयम्। जिसको अभयम् मतलब जो स्वतंत्रता चाहता है, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, जो जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहता है। और आप पूछ रहे हो क्या सुनना चाहिए, श्रोतव्यम उसे उसी भगवान श्री हरि के विषय में सुनना चाहिए, उसी भगवान श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए और उसी के विषय में उसी को स्मरण करना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ बता रहे हैं कि यदि श्रवण करने योग्य कोई है तो भगवान श्री कृष्ण है। यहाँ शुकदेव गोस्वामी जो कि एक वास्तविक ऑथोरिटी है, वो हमें बता रहे हैं कि सुनने योग्य केवल भगवान का, भगवान श्री कृष्ण का विषय है। कीर्तन करने योग्य यदि कोई है तो भगवान श्री कृष्ण ही है, और स्मरण करने योग्य यदि कोई है तो भगवान श्री कृष्ण ही है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सबके प्रिय है, सर्वात्मा। जीव भले स्वीकार करे या ना करे, परंतु जीव के हृदय को आनंद देने वाला यदि कोई है तो भगवान श्री कृष्ण है। इसीलिए जीव का दुख यदि उसे दूर करना है, यदि वो अपने दुखों से निवृत्ति चाहता है, यदि वो मोक्ष प्राप्त करता है, इस संसार में जीव तो प्रत्येक जीव चाहता है ना मुझे दुख ना मिले, मुझे कष्ट ना मिले, तो उसके लिए उसको केवल एक ही कार्य करना है, भगवान के विषय में श्रवण करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान को स्मरण करना। और उन्हीं भगवान के विषय में श्रवण करने से ही हम आगे भक्ति में बढ़ सकते हैं। मनुष्य शरीर भोगों के लिए नहीं मिला है, इस शरीर में कोई भोग कर भी नहीं सकता है, केवल मूर्खता है लोग जो सोचते हैं कि ये संसार में ये शरीर जो है वो इंद्र तृप्ति के लिए, इस मनुष्य देह से अधिक इंद्र तृप्ति तो कुत्ते और सुअर कर सकते हैं। तो ये मनुष्य शरीर तो केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, और भगवत प्राप्ति का सबसे सरल साधन क्या है कि उसी भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तो वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हुए थे, तो वो सोच सकते हैं कि आप ये कैसे बोल सकते हो कि श्रवण कीर्तन से बड़ा और कोई दूसरा साधन नहीं है, क्योंकि सांख्य है, योग है और दूसरा स्वधर्म का पालन है, क्या ये कोई साधन नहीं है? आज आप बड़ा अनोखा साधन बता रहे हो, बस भगवान के विषय में श्रवण करना ही सबसे बड़ा साधन है या फिर उनका कीर्तन करना। तब उन सब ऋषियों को इस बात को क्लियर करते हुए बताते हुए कहते हैं, एतावान् संख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। के कंक्लूजन क्या होना चाहिए जीवन का? अंते नारायण स्मृति, कि हर एक कार्य करते समय यदि भगवान का स्मरण हो रहा है तो समझो वो कार्य सही जा रहा है। लेकिन यदि सांख्य योग का कोई अभ्यास करता है, यदि कोई योग अष्टांग योग का अभ्यास करता है, यदि कोई अपने स्वधर्म का पालन करता है, तो उसके रिजल्ट में इतना सरल नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण याद आए। लेकिन यदि कोई भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, उनके विषय में श्रवण करता है, उनका नाम जप करता है, तो अंते नारायण स्मृति, यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि हर एक कार्य का वास्तविक लाभ क्या है, जीवन की सफलता क्या है, क्या मिल जाए तो माना जाएगा कि हमारा जीवन जो है वो सफल है, वो क्या है? अंते नारायण स्मृति, पग पग में भगवान का स्मरण। आप कुछ भी कार्य करते हैं, यदि रिजल्ट ये निकलता है कि हमें भगवान की स्मृति हो रही है, तो मानो वो कार्य सफल होगा। वरना तो कोई भी कार्य है उसका कोई रिजल्ट वो शुभ नहीं हो सकता, यदि उसके अंदर हमें भगवान स्मरण नहीं होते, यदि भगवान की स्मृति नहीं होती। तो यदि कंक्लूजन यही है कि नारायण का स्मरण ही जीवन का परम लाभ है, तो सांख्य योग और स्वधर्म पालन में बहुत कम ऐसा संभव है। लेकिन श्रवण और कीर्तन में तो शुरू से ही भगवत स्मृति होती है, इसलिए यहाँ पर उदाहरण देते हुए किसी भी तथ्य को स्थापित करने के लिए पूर्व के जो आचार्य उनका प्रमाण लेना होता है, तो श्लोक नंबर 7 में कहते हैं, प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विदिशीदता नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्मा गुणानो कथने हर। कि जो बड़े बड़े मुनि हैं, जो साधक हैं, वो क्या करते हैं? भगवान का गुणगान करने में, गुणानुकथने हरि, भगवान का गुणगान करने में ही आनंद लेते हैं। भगवान स्वयं भी कहते हैं, मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयंतः परस्वरम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे विषय में बोलते हुए, मेरे विषय में श्रवण करते हुए, मेरी कथाओं का गुणगान करते हुए उन्हें वास्तविक आनंद आता है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि यही एक साधन है। आपने जो पूछा है कि किसके विषय में श्रवण करना चाहिए, किसको किसके बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए और किसको स्मरण करना चाहिए, वो सारी जितनी भी आपकी बातें हैं उसका उत्तर श्रीमद् भागवतम में आएगा। इसलिए इदम् भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्मितम अधीतवान द्वापदार्दव पितुर्देह पितुर्द्वैपायनादहम। तो मैंने अपने पिताजी अपने गुरु महाराज द्वैपायन यानी व्यास देव जी से जो भागवतम श्रवण किया है वही भागवतम मैं आपको श्रवण कराऊंगा, वही उसी से सब जीवों का कल्याण होगा, वही श्रवण करने योग्य है। और जब हम भागवतम को श्रवण करेंगे तो हृदय से भौतिक जो गंदगी है, जो भौतिक आसक्ति है, वो सब समाप्त हो जाएगी और हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। और उसके बाद 2.1.11 में बहुत ही सुंदर शब्दों में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एतन निर्विद्यमानानां इच्छता अकुतो भयम् योगिनां निपनिर्णीतम् हरिनामानुकीर्तिनम्। एतन निर्विद्यमानम्, एतत मनम यह है, निर्विद्यमानम मतलब जो समस्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त है उनके लिए, इच्छता मतलब जो समस्त प्रकार के भौतिक भोगों के इच्छुक है उनके लिए, और अकुतो भयम जो समस्त संदेहों तथा भयों से मुक्त है उनके लिए, योगिना माने आत्म संतुष्ट जो लोग हैं उनके लिए भी, नृप हे राजन, निर्णीतम, निर्णीतम मतलब निश्चित सत्य है उनके लिए, जितने भी बड़े बड़े योगी हैं उन्होंने ये निर्णय दिया है। क्या निर्णय दिया है? हरि नाम अनुकीर्तनम, कि उनको हरि के नाम का संकीर्तन करना चाहिए, उन्हीं के विषय में श्रवण करना चाहिए, यही जीवन का परम लाभ है, यही सुनना है, यही बोलना है, इसके अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं। यहाँ पर बोला अब इसके विषय में अधिक सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि योगी नाम निर्णीतम, बड़े बड़े योगियों ने निर्णय दे दिया है, अब विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवतम की इतनी महिमा बता रहे हैं कि इसके अतिरिक्त और कुछ श्रवण करने, क्योंकि एक एक श्रवण करने से भगवान में प्रीति उत्पन्न होगी। जो जो यहाँ पर हम श्रवण करने वाले हैं श्रीमद् भागवत, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि उसके लिए अभी आपको अधिक मत्था कुटी करने की जरूरत नहीं है, ये निर्णय निकालने की जरूरत नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दिस इज ऑलरेडी डिसाइडेड, है ना। योगी नाम निर्णीतम के कलयुग में इस भगवान के कथाओं को श्रवण करने के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है, क्योंकि जब से ही सिद्धि होगी जीव को हर समय क्या करना चाहिए, हरे नामानुकीर्तन, हरि के नाम का संकीर्तन करना चाहिए, ये फाइनल डिसीजन है। जबा सिद्धि, जबा सिद्धि, जबा सिद्धि न संशय, कि इसके अतिरिक्त और कोई सिद्धि है नहीं, आप और कुछ भी करके भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हो, और जितना जितना हम श्रवण करेंगे उतना उतना भगवान के प्रति हृदय में प्रेम और आसक्ति उत्पन्न होगी, और उसी से हम जो है वो भगवान के संकीर्तन में जुटते जाएंगे। तो सबसे टॉप क्लास का प्रवचन यहाँ सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, इसलिए सारे ऋषि उस प्रवचन को यहाँ पर सुनने के लिए आए। लेकिन जैसे परीक्षित महाराज ने ऐसा सुना कि श्रवण करना है मुझे भागवतम का, तो उनके हृदय में थोड़ा सा बहुत दुख उत्पन्न हुआ कि मेरे पास तो इतना समय नहीं है, मैं तो बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ कि अब इस समय मुझे पता चला है कि भगवान की लीलाओं को सुनना चाहिए, तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नहीं नहीं, बहुत समय आपके पास, क्योंकि इतने बहुत सारा जीवन जो भगवान के विषय में श्रवण करते नहीं है, जो लोग ऐसे ही अपने जीवन को नाश कर देते हैं, उनका इतना बड़ा जीवन किसी कार्य का नहीं है, क्योंकि लापरवाही में हजारों साल जीने से क्या लाभ। जीवन का वास्तविक लक्ष्य तो भगवान से प्रेम है, तो आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। एक मुहूर्त भी श्रेष्ठ है जिसमें जानकारी हो कि लक्ष्य कृष्ण को स्मरण करना। हजारों साल अगर जीवन आपका बच भी जाए, लेकिन यदि लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ते तो क्या लाभ है। फिर वो बहुत सुंदर है ना, उदाहरण देते हैं, कटवांगो नाम राजर्षि, खटवांग नाम के जो राजा थे उनके पास तो सिर्फ एक मुहूर्त सर्व मृत्यु सर, कि उनके पास तो सिर्फ एक मुहूर्त रह गया था, एक क्षण उनके पास शेष रह गया था, और उन्होंने तुरंत ही अपने आप को समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त करके परम रक्षक भगवान श्री कृष्ण की शरण गता वा अभयम हरिम, हरि की शरण ले ली। तो आपके पास तो बहुत सफिशियंट समय है, तवाप्य तर्हि कर्तव्यम सप्ताहम जीवितावधि, आपके पास तो पूरा हफ्ता है, सप्ताह है पूरा। इस सप्ताह में हम भागवत सप्ताह करेंगे और उससे आपको परम लाभ प्राप्त होगा। भगवान की कथाओं को श्रवण करने के हृदय भगवान से प्रेम करने के लिए उत्सुक हो उठेगा। तो यहाँ तक उन्होंने प्रथम प्रश्न का कि क्या श्रवण करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, उसका स्पष्ट उत्तर दिया। और उसके बाद बता रहे मिलियमाणस से सर्वदा, जो मृत्यु के निकट आ जाए उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए वहाँ पर बताते हैं कि जब तक जीव का मोह जो है वो संसार में है तब तक वो इस झंझट से निकल ही नहीं सकता। इसलिए क्या करना चाहिए, इस संसार और संसार से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति और वस्तुओं को अपने आप को दुख पहुंचाने वाला समझना चाहिए, क्योंकि ये वास्तव में दुख ही तो है कि ये वस्तु और व्यक्तियों का आकर्षण हमें हमारे परम आनंद प्रदान करने वाले कृष्ण से दूर कर देता है। कौन है आप में से, मुझ में से ऐसा जिसको संसार की इस असारता का, इस कटुता का अनुभव ना हुआ हो, ना होता हो, ना हो रहा हो, सतत हो रहा है। और यही भगवान की माया है कि इस कटुता का, क्लेश का, पीड़ा का, वेदना का अनुभव होते हुए भी कोई ना कोई बंधन इस ओर बंधा हुआ है, जो प्रयास करने पर भी छूटता नहीं है। और ये संसार हमको भगवान से दूर कर देता है। इसलिए यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो कभी अपने घर बार को छोड़कर निकल जाना चाहिए। जब लगे कि अब समय समाप्त, 50 के बाद तो बोनस की जीवन है, तो बताते हैं निकल जाना चाहिए हरिद्वार में, वृंदावन में, घर में आसक्ति छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं बिगड़ेगा आपके जाने से। जो आज अग्नि में भस्म हो गए हैं या कब्रों में मट्टी के नीचे दबे हुए हैं, वो भी यही सोचते कि हमारे बगैर ये दुनिया नहीं चलेगी, अभी उससे अच्छी तरह चल रही है। इसलिए ये शरीर से आत्मा निकल जाए, उससे पहले इस शरीर को घर की आसक्ति से निकाल देना चाहिए। जो कर रहे हैं करने देना चाहिए और अपने वास्तविक लाभ के लिए घर गृहस्थी के झंझट को छोड़ देना चाहिए और भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और किसी पवित्र तीर्थ स्थान में जाकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। पहले नए नए हैं तो प्रत्येक वस्तु में भगवान का चिंतन करना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के चैप्टर नंबर 15 में बताते हैं, यदादित्य गतम तेजो, सूर्य को तो सब देखते हैं ना, भले भक्त न हो लेकिन फिर भी सूर्य को देखकर एक अंधा और एक उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। और भगवान कहते हैं सूर्य मेरी आंख है, तो सूर्य को देखकर भगवान को याद करो। चंद्रमा, भगवान कहते हैं ये चंद्रमा जो है प्रत्येक जो जड़ी बूटियां हैं, जो सब्जियां हैं, सबके अंदर रस प्रदान करता हूं। तो हर एक वस्तु को देखकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। पहले विराट पुरुष का ध्यान, कभी घर से बाहर निकलकर साधु संग करना चाहिए, भगवत कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। और दूसरे अध्याय के प्रारंभ में जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि संसार के भोगों से आत्मा का कोई वास्ता नहीं है। जब पता चल जाए कि मैं आत्मा हूँ तो शरीर चलाने के लिए कुछ भोगों की आवश्यकता है, तो बस वही वस्तुएं जो आसानी से सरलता से प्राप्त हो जाए उन्हीं को स्वीकार करके अपनी आत्मा की उन्नति करना चाहिए, अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। और वो कहते अत कवि नाम सुयावदर्थ सादा प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धि यथार्थे नयति तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणम्। अतः कवि नामसु, यानी जितने कवि हैं, बुद्धिमान हैं, वो केवल नाम के लिए ही, यावत जो वस्तुएं हैं, जो भौतिक अर्थ है, उसको केवल नाम के लिए स्वीकार करते थे। मतलब किसी भी वस्तु में कोई आसक्ति नहीं है, तो इसमें हमें सावधान रहना। सिद्धि ननार्थे न यतेत तत्र, मतलब अवांछित वस्तुओं के लिए कभी भी कोई अधिक प्रयास या प्रयत्न नहीं करना चाहिए। परिश्रमम तत्र समीक्षणमानम के अधिक परिश्रम करने के लिए, भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को इतना नष्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि मनुष्य शरीर गधों की तरह हार्ड लेबर करने के लिए नहीं मिला है। सवेरे से रात तक केवल जॉब करना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। बस थोड़ी सी मेहनत के बाद जो साधन प्राप्त हो रहा है उसी से अपने इस शरीर का निर्वाह करना चाहिए। बस थोड़ा बहुत अन्न खाकर या जल पीकर भजन करने में ज्यादा से ज्यादा समय लगाना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कितना तो परिश्रम किया जाता है हर एक वस्तु प्राप्त करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो अर्निंग करने में लगाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही सुंदर बताते हुए कहते हैं कि सोने के लिए तो यदि धरती है तो बड़े बड़े मखमल के पलंग किया, बहुत सुंदर सुंदर गद्दों की क्या आवश्यकता है। सत्यांक्षितौ किं कशिपौ प्रयासै बर्हौ स्वसिद्धि युपबर्हणै किं सत्यं जलौ किं पुरुधान्न पात्र्या दिग्वल कलादौ सति किं दुकुलै। जब सोने के लिए जमीन है तो पलंग की क्या आवश्यकता है, सोना ही तो है। रात को सोकर जल्दी उठने का प्रयास करना चाहिए। जितना जितना कंफर्ट स्लीप होगी, साउंड स्लीप होगी, उतना उतना हम भगवान की भक्ति से पीछे चले जाएंगे। क्योंकि उठने का दे और उसके लिए भी नरम नरम तकियों की आवश्यकता नहीं। जब भगवान ने दो हाथ दिए हैं, बाहों स्वसिद्ध है, जब दो बाहों दिए तो उनको जोड़कर सिर के नीचे रखकर सो जाना चाहिए और तकिए की कोई आवश्यकता नहीं। सुखदेव गोस्वामी यही बोल रहे, ये प्रैक्टिकल वो कर रहे हैं। क्योंकि ये शरीर जो है वो तो एक साधन है भगवत प्राप्ति करने के लिए, और हम केवल इस शरीर को सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को किस तरह से नष्ट कर रहे हैं। तो बता रहे हैं सत्यम जलौ किम पुरुधान्न पात्र, ज्यादा ज्यादा बर्तन जमा करके उसको अलग अलग डिशेस में डाल के खाने की आवश्यकता नहीं। हाथ में थोड़ा सा हाथ में पकड़ के खा लेना चाहिए, और इतने ज्यादा डिजाइन के कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो कह दिया कि पत्तों की छाल पहनकर, क्योंकि शरीर ही ढकना है ना, शरीर को ढक लो बस। इतने ज्यादा डिजाइन के कपड़े सिलवाने की या उसमें बेकार समय और जीवन को नाश करने की जरूरत नहीं। ऐसे काम चला लो कि बस इस जीवन में भगवान को प्राप्त करना ही सर्व प्रमुख जो है ना वो साधन होना चाहिए। और इन वस्तुओं को प्राप्त करने के कितना टाइम वेस्ट होता है। सुखदेव गोस्वामी के कहने का अभिप्राय ये है कि जीवन में कम से कम संग्रह करना चाहिए। गृहस्थ जीवन का मतलब ये नहीं है कि सारा ही जीवन, सारा ही समय केवल संग्रह करने में ही समाप्त करने चाहिए। भजन के लिए स्पेशल समय होना चाहिए। और यहाँ पर वे कहते हैं चीर्णानि किं पथि न सन्ति दिशन्ति वीक्षा, कि यदि शरीर को ढकना है तो बहुत सारे ना चीर जो है पुराने कपड़ों से भी हम ढका जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत नए नए वस्त्र जो है उनके लिए अपने शरीर के लिए बनाए जाए। नैवांग रिपा प्रभत सरितोप्य शुष्यन, खाने के लिए इतनी सारा वैरायटी की आवश्यकता नहीं है। रोज नया किचन किंग चाहिए हमको, रोजाना नए नए स्वादिष्ट व्यंजन की क्या आवश्यकता है। बस जो वृक्षों से फल और सब्जियां प्राप्त हो रही है उनसे गुजारा कर देना चाहिए। और रुद्धा गृहा के मजितो वतिनोपसन्न, वास्तव में जो मरने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए बता रहे हैं कि भगवत भजन बहुत बहुत आवश्यक है, बस उसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। परंतु आज का मनुष्य जितना बूढ़ा होता जाता है ना, उतनी भौतिक वस्तुओं में आसक्ति और भी बढ़ जाती है। ऐसा बना के खिलाओ, अभी मुझे ये खाने की इच्छा हो रही है, अभी मुझे ये खाने की इच्छा हो रही है। तो बस जो कुछ है सिंपल सा खाकर बस अपने जितना जी रहे हैं उतनी देर में भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि अजितोवती नोपसन्नान, क्या अजित भगवान ने, कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा करना छोड़ दिया है। भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, भगवान के ऊपर विश्वास करना चाहिए। जो आपके भाग्य का आप है वो आपको आकर मिलेगा, उसके लिए स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से हमारे भाग्य के दुख स्वतः आकर मिलते हैं, उसी तरह से हमारे भाग्य का जो सुख है वो भी मिलेगा। प्रयत्न करना है तो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, भगवान पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, जीवन बिल्कुल खाली होना चाहिए, समय सफिशियंट समय होना चाहिए कृष्ण की भक्ति के लिए। जीवन का बहुत बड़ा रहस्य बता रहे हैं कि इन भौतिक वस्तुओं में कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है। उसके बाद दूसरे अध्याय के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 32 श्लोक से वो निर्णय लेते हुए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, एते श्रीति ते नृपवेद गीते त्वया विप्रष्टे च सनातने च ये वै पुरा ब्राह्मण आह तुष्ट आराधितो भगवान वासुदेव। हे महाराज परीक्षित, आप इतना जान लें कि मैंने आपकी जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है वह वेदों के कथन अनुसार है। तो अया भी प्रश्न सनातने पूरा ब्राह्मण आहतुष्ट, जब ब्रह्मा जी से वही सनातन सत्य है, इसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से कहा था। कब कहा था? तुष्ट, जब वो प्रसन्न हो गए थे। आराधित भगवान वासुदेवा, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से जब पूजे गए थे भगवान बहुत प्रसन्न हुए थे। और भगवान ने ही ब्रह्मा जी को कहा था, क्या कहा था? न ह्य पुण्यः शिवः पन्था विशतः संस्रिता विह वासुदेवी भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। न ह्य तो अन्यः शिवः पन्था, अन्य मतलब दूसरा कोई, शिवः मतलब कल्याणप्रद, पंथा मतलब साधन। न ही तो मतलब निश्चित रूप से दूसरा और कोई कल्याण का रास्ता है ही नहीं। विशतः संस्रिता विह, विशतः का मतलब है भटकते हुए, संस्रितो मतलब भौतिक जगत में, यह मन इस जीवन में, इस संसार में जितने भी जीव जन्म मरण के चक्कर में, ये मृत्यु लोक है, जीव स्वाभाविक दुखी है, स्वाभाविक भटक रहा है। यहाँ आना इस आत्मा का लक्ष्य नहीं है, आत्मा जन्म मरण के चक्कर में फंसने के लिए नहीं है, लेकिन विशतः संस्रिता भी, हम ना जाने कितने करोड़ों जन्मों से भटक रहे हैं और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भगवान का निर्णय है। ये साक्षात भगवान कह रहे हैं, न ये तो अन्यः शिवः पंथा, इस रास्ते से इलावा और कोई कल्याणप्रद रास्ता है ही नहीं, क्योंकि जिसको याद करने से कृष्ण प्रेम, कृष्ण से प्रेम भक्ति योग हो, उसी से वास्तविक कल्याण होगा। और यहाँ पर साफ साफ बताया जाता है, न ही तो अन्य शिव पंथा, इसके अलावा अन्य कोई मंगलमय रास्ता, कोई मंगलमय मार्ग है ही नहीं। ऐसा नहीं ये बता रहे हो कि दूसरे जो हैं वो भी कल्याणकारी रास्ते, नहीं, साफ साफ बताया न ही तो निश्चित रूप से नहीं है, रास्ते हैं। योग साधना का रास्ता है, ध्यान करने का रास्ता है, और दूसरे भी कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, बहुत सारे रास्ते हैं, परंतु यहाँ साफ साफ बताया जा रहा है शिव पंथा, कल्याण का रास्ता नहीं, दूसरे रास्ते बहुत बहुत भयानक रास्ते हैं, बहुत कष्ट प्रदान वाले रास्ते हैं, कहीं पर खड्डे हैं, कहीं पर बहुत पथरीला रास्ता है, कहीं पर कांटे हैं, तो जीव पहुंचेगा ही नहीं। शिवः पंथा मतलब कल्याणकारी रास्ता सिर्फ एक ही, कौन सा है? वासुदेवे भगवती भक्ति योग यतो भवेत्। वासुदेव भगवती, भगवान वसुदेव की भक्ति योग, भक्ति के साथ जब भगवान के साथ संबंध जोड़ा जाता, भक्ति योग से अद्भुत आनंद और हर्ष प्रदान करने वाला, जिससे भक्ति प्रदान हो, जब भक्ति वृद्धमान हो, और कोई रास्ता हो ही नहीं सकता, और कोई शिवः पंथा, बहुत आनंद में, इसमें क्या है भक्ति, भक्ति करने में कितना आनंद है वो तो केवल वही जान सकता है जो भक्ति करता है।
है ना, देखने में हम दूर से देखेंगे तो भक्ति स्वादिष्ट नहीं लगेगी। क्या लगेगा कि कितना कष्ट लगता होगा, सुबह उठते हैं, सुबह सवेरे उठकर उनको मंगल आरती करनी पड़ती है और 16-16 माला जप करनी पड़ती है, और कितना तो रिस्ट्रिक्शन है, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, इधर नहीं जाओ, वो नहीं देखो। लेकिन जो भक्ति कर रहा है, क्योंकि प्रेम जब किया जाता है तो वो केवल प्रेमी ही उस आनंद का अनुभव करता है। प्रेम के अंदर उसे क्या मिलता है वो तो कभी सोचता ही नहीं है। मैं अपने प्रीतम को क्या कर सकता, उसको प्रसन्न करने के लिए वो कुछ भी करता है तो उसे आनंद आता है। तो ये तो उसी को पता है जो मंगल आरती पर जागते हैं और जब सुबह सवेरे भगवान के दर्शन करते हैं, जब उनके मुख से महामंत्र की ध्वनि उच्चरित होती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब वो भगवान की सेवा करते हैं, कुछ त्यागते हैं एकादशी के दिन, जब वो अनाज का त्याग करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो कोई भी क्रिया कर रहे होते हैं, उसमें उनको कितना आनंद आता है वो तो केवल वह भक्ति ही जान सकता है। तो यहाँ पर तो भगवान ने कह दिया कि वह आनंद बताने जैसा है भी नहीं, वो तो खुद महसूस किया जाता है, क्योंकि उससे बढ़कर तो कोई आनंद हो ही नहीं सकता। तो वहाँ पर तो बहुत सारे साधु बैठे हुए, तो मानो कोई सुखदेव गोस्वामी से पूछो कि आप इतना जोर देकर भक्ति की प्रशंसा क्यों कर रहे हो। तब वो पूछे कि क्या आपके पास कोई प्रमाण है। फिर सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर प्रमाण देते हुए कहते, किसका प्रमाण दे रहे, ब्रह्मा जी का प्रमाण देते। एक बार ब्रह्मा जी वेद के एक एक अक्षर पर विचार कर रहे, शुरू से लेकर अंत तक वेद को बार बार पढ़ रहे थे और ये जानना चाहते कि वेद का सार क्या है। और सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, भगवान ब्रह्म का स्वेना तिरन्वीक्ष मनीषया तदद्यवस्यत्कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत्। भगवान ब्रह्मा, यहाँ ब्रह्मा जी को भगवान कहा गया कि ब्रह्मा जी जो महापुरुष हैं, ब्रह्मा जी जो कि 12 महाजनों में से एक हैं और वो समस्त वेदों के ज्ञाता हैं, जिनको साक्षात भगवान ने हृदय में ज्ञान दिया, काशेना तो संक्षिप्तिकीकरण द्वारा क्या किया उन्होंने, त्रि अन्वीक्ष, त्रि मना तीन बार, अन्वीक्ष मतलब बहुत ध्यान से पढ़ा। एक बार पढ़ा, उसका जो कंक्लूजन निकला, उन्होंने सोचा क्या खबर मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो, वापस से उन्होंने पढ़ा, फिर भी वही कंक्लूजन निकला। और उसके बाद उन्होंने एक बार फिर करके देखा तो त्रिरन वीक्ष मनीषया, मनीषया मतलब बहुत ही अत्यंत विद्वत्ता पूर्वक। हम सोच सकते हैं कि ब्रह्मा जी के पास कितनी बुद्धि होगी और उन्होंने अपनी संपूर्ण बुद्धि और इतनी सुंदर बुद्धि जो भगवान में लगी हुई, इतनी इतनी सुशील बुद्धि जो एकदम परफेक्ट निर्णय दे सकती है, वो बुद्धि के साथ बहुत विचार किया और उसके बाद तदध्य वस्यत मतलब अध्यवस्थित मतलब निश्चित किया। उसके बाद उन्होंने क्या निश्चित किया, कूटस्था मन की एकाग्र, मन भी उनका विचलित नहीं था, बुद्धि भी उनकी टिकी हुई थी। तब उन्होंने क्या किया, रति रात्मन यतो भवेत, कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। मतलब कि जो काम करने से भगवान श्री कृष्ण में रति उत्पन्न हो वही वेद का सार है। और वो कौन सा कार्य है जिससे भगवान श्री कृष्ण के अंदर कृष्ण से प्रेम उत्पन्न होता है, कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, वो नवदा भक्ति है। क्या भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवण करना, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना, भगवान को स्मरण करना। जीव के कर्तव्य के विषय में जब परीक्षित महाराज ने पूछा था कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और किसको स्मरण करना चाहिए, तो एकदम क्लियर वो उत्तर दे रहे हैं, बस वही करना चाहिए, रति रात में ना
यतो भवेत्, जिससे भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम, हमारा आकर्षण बढ़े।